बहुत बहुत धन्यवाद विशु भाई। रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा सादर सप्रेम साई राम। यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और मैं अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सतसाई बाबा जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आप सभी को हमारे आज के साप्ताहिक सीधे प्रसारण के अंतर्गत हिंदी भाषा में होने वाले प्रसारण पर आमंत्रित करता हूं। प्रिय श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम में श्री रविन्द्र ग्रोवर जी द्वारा तीन देवियां नामक शीर्षक पर आधारित एक वार्ता के प्रसारण के पश्चात स्वामी के महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी श्री सुनम गैम्सो तेंजिन जी से टीम रेडियो साई के सदस्य श्री अभिमन्यु कौल जी की हुई भेंट वार्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आप एक भजन भी सुनेंगे। तो आइए श्री रविन्द्र ग्रोवर जी से कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं तीन देवियां नामक शीर्षक पर आधारित एक वार्ता।
आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक दिव्य भजन से।
दिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्रिंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगना कर सबका मन मंदिर उज्जवल करो कृपा कर दिया।
नवरात्रि अर्थात नौ रातें। कहा जाता है एक शक्ति ने अवतार लिया, अपने भिन्न स्वरूपों में राक्षसों के साथ नौ दिन तक युद्ध करती रही। विजयदशमी के दिन सभी राक्षसों को मार गिराया, उनकी विजय हुई। संयोग से विजयदशमी का दिन वो भी है जिस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण को मारा था, जिसे हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रि में हम शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करते हैं, नौ देवियों की पूजा करते हैं। ज्यादातर हमारा नवरात्रि मनाने का ढंग अलग सा होता है। कई लोग गरबा करते हैं, कई लोग हवन करते हैं, कई लोग मंत्रों का जाप करते हैं, कई लोग उपवास रखते हैं, कई लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं। आज हम नौ देवियों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं केवल तीन देवियों की, तीन महादेवियों, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती या महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। कहा जाता है नवरात्रि के पहले तीन दिन दुर्गा या काली की पूजा की जाती है, फिर अगले तीन दिन लक्ष्मी की, फिर अगले तीन दिन सरस्वती की, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती। दुर्गा ही काली का रूप धारण करती है असल में, इसलिए हमने यहां काली शब्द का प्रयोग किया। पहली बात यह समझें कि दुर्गा कौन है। यह हमारे लिए हम उन्हें किस रूप में समझें। दुर्गा दुर्गति दूर कर, सुना आपने, जो हमारे ऊपर कोई दुर्गति आने वाली हो या आ रही हो उसको दूर करें। दुर्गा नाम इसलिए पड़ा था कि माता ने दुर्ग नामक राक्षस को मारा था। दुर्गा का अर्थ है डायनामिज्म, दुर्गा का अर्थ है एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी एंड माइंड, दुर्गा का अर्थ है एनर्जी, दुर्गा का अर्थ है शक्ति जो आपके भीतर आपके शरीर को हिलाती है, मूव करती है, जिस शक्ति के द्वारा आपका शरीर काम करता है। आपके अंदर एक शक्ति है, एनर्जी है, उसे कहा गया दुर्गा। अब जरा आप ये सोचें किस प्रकार से दुर्गति को दूर करती है। भाई आप अपने बचपन में लौट के जाएं, बचपन की बात छोड़िए, आप बाहर नेचर को देखिए, प्रकृति को देखिए। एक कुतिया का बच्चा सामने पिल्ला है, आप उससे छेड़खानी करते हैं, जो माता कुतिया है आप पर आक्रमण कर देती है, अपने बच्चे की रक्षा करती है। आप एक चिड़िया के बच्चे को हाथ लगाएं, चिड़िया नन्ही सी अवश्य है लेकिन अपने चोंच से आपके ऊपर आक्रमण करती है। किसी पक्षी के अंडे को आप हाथ लगाएं, वह पक्षी आप पर आक्रमण कर देता है। जबकि पक्षी जानता है वह आपके शरीर में छोटा है, ताकत में छोटा है, लेकिन वह ये सोचता नहीं है, अपने बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं। इसी प्रकार से माता दुर्गा अगर आप पर कोई आक्रमण होता है उससे आपकी रक्षा करती हैं। हम लोगों ने इसका गलत अर्थ लगाया हुआ है कि हमारे पर कोई विपत्ति आए तो माता दुर्गा का बुकारे विपत्ति दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। विपत्ति का अर्थ है समस्या, कोई प्रॉब्लम, वो बात ठीक है, लेकिन अगर कोई आप पर आक्रमण कर रहा है वो अलग बात है। आपकी समस्या आपने जानबूझकर बनाई है, बुलाई है, तब माता को दोष ना दें कि माता मेरी रक्षा हेतु नहीं आई। माता लक्ष्मी का अर्थ है इच्छा शक्ति या विल पावर। भी आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए प्राप्त करने की। माता लक्ष्मी की पूजा करने से, आराधना करने से आपके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल होती है, विल पावर बढ़ती है। अब यह इस पर लौट कहेंगे, माता सरस्वती को कहा गया ज्ञान की माता, लेकिन माता सरस्वती का काम ज्ञान देना अवश्य है, लेकिन कौन सा ज्ञान? गणित का नहीं, भूगोल का नहीं, खगोल का नहीं, आत्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की अनुभूति। अब आप देखिए, दुर्गा एक शक्ति है जो आपके शरीर को चलाती है, इसलिए हमने कह दिया कि दुर्गा का संपर्क आपके शरीर से ज्यादा हो रहा है और शरीर से आप कर्म करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि माता दुर्गा कर्म करवाने की शक्ति है। कहा ये तामसिक शक्ति है, अर्थात तामसिक एक गुण है, कोई खराब चीज नहीं, एक गुण है। माता लक्ष्मी, आपको विल पावर चाहिए, आपको इच्छा शक्ति चाहिए, वो मन से इच्छा उत्पन्न होती है। तो कहा गया माता लक्ष्मी मन के लिए, वो राजसिक है। माता सरस्वती जो आपको आत्मा तक लेकर जा रही है, वह सात्विक हो गई। अर्थात एक ही शक्ति के तीन गुण, तमत रजस सत्व आपके भीतर हैं। अब आप सोचिएगा, जब हम दुर्गा नामक शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, उससे हम अपने शरीर को चलाते हैं, अपने शरीर को एक्टिवेट करते हैं, एनिमेट करते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में? हम शरीर से कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर्ता हम हैं? अगर हम यही सोच रहे हैं कि कर्ता हम हैं या कर्तापन अपने ऊपर ले रहे हैं, उस कर्म का फल भी आएगा, हम उससे बच नहीं सकते। तो माता दुर्गा हमसे कौन सा कर्म करने को बोल रही है भाई? माता दुर्गा कह रही है अपने शरीर से आपको देवी की पूजा करनी है। अजीब सी बात लग रही है थोड़ी। माता लक्ष्मी मन से उत्पन्न हो रही है। मन क्या है? बंडल ऑफ डिजायर्स, एक इच्छाओं की गुत्थी है। अगर मन को परमात्मा की ओर मोड़ दिया जाए, वह उपासना बन जाता है, वह भक्ति बन जाता है। तो मन से हमें भक्ति करनी है। माता लक्ष्मी से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब पूजा कर रहे हैं, जब उनकी आराधना कर रहे हैं, हम केवल भक्ति की मांग कर रहे हैं। और ध्यान रहे, माता लक्ष्मी कहां रहती है? वैकुंठ में नहीं। वैसे तो हम सब लक्ष्मी को जानते हैं, कौन लक्ष्मी को नहीं जानता? दिवाली के समय हर व्यक्ति अपने घर में लक्ष्मी पूजा कर रहा होता है। हम सोचते लक्ष्मी का अर्थ है धन संपत्ति, लक्ष्मी का अर्थ है सुख, यह हम गलती कर रहे हैं। लक्ष्मी का अर्थ है वो धन जो सात्विकता से हमने कमाया हो, वो धन जो मेरे पूर्वजों के नाम को ना डुबोए, वो धन जो मेरी आने वाली पीढ़ियों में सुख और शांति और समृद्धि लेकर आए, सात्विकता लेकर आए, वो धन जो मैंने मेहनत से कमाया है। कमाई भी दो प्रकार की है, खून की कमाई, पसीने की कमाई। पसीने की कमाई वो है जो दिन भर जब काम करते हैं पसीना भाग के कमाते हैं। खून की कमाई वो है जो आपके पूर्वज या आपके घर वाले आपको दे जाते हैं। हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, मेरे पूर्वज मेरे लिए छोड़ गए हैं। ये तो पता नहीं किसके लिए छोड़ गए हैं, लेकिन कमाई तुम्हारी नहीं है, उनकी है। लक्ष्मी नारायण के चरणों में बैठती है, नारायण के चरण दबाती है। अगर आप नारायण बन जाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे दूर नहीं है, आपको चरण दबाने को तैयार है। सरस्वती का अर्थ है ज्ञान, सरस्वती का अर्थ है सात्विकता, सरस्वती का अर्थ है आत्मा। कौन सा ज्ञान? भूगोल खगोल गणित नहीं। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपनी अंदर शरीर की जो शक्ति है, जो दुर्गा शक्ति है, जो लक्ष्मी सरस्वती है, उसका उपयोग करना पड़ेगा, उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। ऑलवेज स्पीक सॉफ्टली एंड लविंगली, क्योंकि माता सरस्वती वाक् शक्ति भी है हमारी स्पीच के लिए, हमारी वाणी के लिए। अगर हमारी वाणी में मिठास नहीं है, हमारी जीभ जो हिलती है वो दुर्गा शक्ति है, लेकिन जीभ हिल के क्या बोलती है? वो मन की शक्ति है, वो लक्ष्मी की शक्ति है। वो शक्ति हमें कहां लेके जा रही है? आत्मा तक। वो सरस्वती की शक्ति है, समझिएगा बात को, इतना सरल नहीं है। माता दुर्गा हमारी जीभ को हिला रही है, शक्ति दे रही है, हिला रही है, लेकिन जीभ क्या बोलने जा रही है? वो मन से आ रहा है, वो लक्ष्मी माता का काम है, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो माता सरस्वती का है। अगर मन मीठी बातें करता है, अगर आपके जीभ में मिठास है, किसी वेद का पहला श्लोक भी है, सदैव मधुरभाषी भवा, हमेशा मीठा बोलो, लोगों को कष्ट न पहुंचे। और माता लक्ष्मी जो नारायण की सेवा करें, इसकी बात हम कर रहे थे, वो क्या? आप विष्णु नहीं बन जाएंगे। हां, नारायण का अर्थ है दरिद्र नारायण, नारायण का अर्थ है गरीब लोग बेचारे जो तड़प रहे हैं भूख से, उनकी सेवा कर दो मेरे भाई, आपके पास जो लक्ष्मी अपने आप आएगी। दुर्गा शक्ति से आपका शरीर हिलेगा, आप उस शरीर से आप गरीबों की सहायता करेंगे, उस शरीर से आप दरिद्र नारायण की सहायता करेंगे। दूसरी बात, जब आप छोटे से बच्चे थे, कोई आपके ऊपर आंख उठा के भी देखे, सबसे पहले आपकी रक्षा हेतु तो कौन आती है? आपकी अपनी मां। आपके सुख का संपूर्ण ख्याल कौन रखती थी? आपकी मां। मेरे बच्चे ने खाना खाया ही नहीं, आप दूसरे कमरे में जरा सा सिस्तारी भी लें, थोड़ा रोएंगे, मां किचन में होगी, लेकिन दौड़ती आ जाएगी, उसके अंतर से आवाज आएगी, मेरा बेटा शायद भूखा है, शायद रो रहा है, अमीर अल्लाह क्या हो गया मेरे बच्चे को? इतना प्रेम कौन उड़ेलता था आपके ऊपर? आपकी मां। किसने आपको चलना सिखलाया? किसने आपको बोलना सिखलाया? किसने आपको संसार में रहना सिखलाया? आपकी मां। किसने आपको सारा ज्ञान दिया? मां। तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती कहां है? मां के भीतर है। आपकी मां ही दुर्गा है, आपकी माता ही लक्ष्मी है, आपकी माता ही सरस्वती है। बात यही समाप्त हो गई। कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है भाई मेरे। बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ के दुर्गा के दर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला, अगर हमने अपनी माता की सेवा नहीं करी, अपनी माता को आदर सत्कार नहीं दिया, अपनी माता को प्रेम नहीं दिया। कभी मां के चरण दबाए बैठ के, सारी शक्ति वहां समाई है। लक्ष्मी आपके घर आने को तड़प रही है, लेकिन हम नवरात्रि का अर्थ गलत लेते हैं। हम सोचते हैं उपवास रखेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, अपने पेट को कष्ट देंगे। बिकॉज वी आर बाउंड बाय द कंडीशन, वी आर कंडीशन बाय द कल्चर। ऐसा बोलना शायद ठीक होगा, क्योंकि हम बचपन से जो देखते आ रहे हैं वो चीजें हमारे दिमाग से निकलती नहीं है, हम फिर भी वो करना चाहते हैं। रखिए, व्रत रखिए, कोई गलत बात नहीं है, कम से कम आपको वेट तो कम हो जाएगा आपका, लेकिन मन में उससे शांति आएगी, मुझे इसमें संदेह है। उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी, इसमें भी संदेह है। उससे आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, उसमें भी संदेह है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती आपके घर में, आपकी माता में है, आपकी पत्नी में है, आपकी पुत्री में है, प्रत्येक स्त्री में है जिसके अंदर इस प्रकार के गुण हैं। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? आप विचार करें, हमें क्या करना चाहिए? आप जरा सोचिएगा, हमें क्या करना चाहिए? उत्तर आप जानते हैं, आपके पास है, विचार कीजिएगा, सोचिएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता इस बार हम नवरात्रि एक अलग अर्थ से मनाएं, अलग तरीके से मनाएं? दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, दुर्गा भवानी, काली, सब माताओं को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर दें अपने घर के अंदर, मन में प्रेम ले आए, सेवा की भावना ले आए, वाणी में मिठास ले आए, अपने शरीर का प्रयोग दुर्गा नारायण के लिए कर दें। कोशिश कीजिएगा। कैसा है?
साई राम, यह है रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। अभी आपने तीन देवियां नामक शीर्षक पर आधारित एक वार्ता का प्रसारण सुना। वार्ताकार थे श्री रविन्द्र जी ग्रोवर। अब प्रस्तुत है स्वामी के महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी श्री सुनम गैम्सो तेंजिन जी से टीम रेडियो साई के सदस्य श्री अभिमन्यु कौल जी की हुई भेंट वार्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग।
कोई आपकी यादें जो भगवान जोटामा बनाते थे, स्वामी राधा कृष्ण था, हिरेन्द्र था, शंकराचार्य था, उसके लिए आपने संगीत दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने दिया, जैसे आपने बताया कि भगवान नहीं दिया मगर आपको प्रेरित किया। उस समय भगवान से काफी कुछ आप लोग इंटरेक्ट करते थे, मिलते थे और भगवान बहुत गाइडेंस करते थे किस तरह का म्यूजिक चाहिए। कुछ हमें भी शेयर करें, कोई आइडिया लगे लोगों को कि भगवान किस तरह गाइड करते हैं और कैसे इंस्पायर करते हैं आप लोगों को।
ये स्वामी की 60th बर्थडे जन्मोत्सव का समय था और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे राधा कृष्ण ड्रामा जो आप उल्लेख कर रहे थे अभी। तो उसमें जो सारा ही ड्रामा डायलॉग सारा ही स्वामी ने खुद लिखकर हमें सिखाया। तो रोज ही बुलाते थे अंदर और हमें सिखाते थे।
सुना, एक्टिंग भी सिखाते थे?
एक्टिंग भी सिखाते थे और डायलॉग्स और डायलॉग डिलीवरी सारा ही स्वामी सिखाते थे। तो स्वामी ने कहा कि इसका म्यूजिक धुन तुम बना लेना। तो फिर मैंने जो बनाया तो फिर बम्स एंड जम्प्स में मैं उसमें लग गया। तो मैंने एक ऐसा धुन बनाया तो स्वामी पहली बार इसमें इतने सारे सॉन्ग्स थे, इतने सारे गाने थे, करीब 14 गाने, उसके बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करना। तो पहली बार जब स्वामी इंटरव्यू दे रहे थे, रिहर्सल के लिए स्वामी आए, तो स्वामी ने कहा कि ये ठीक नहीं है ट्यून, म्यूजिक जो है बहुत लंबा है, फिल्म में हो सकता है ये सब, क्योंकि फिल्म में तुम जब संगीत बजाओगे तो अलग अलग सीन्स दिखा सकते हैं वहां पर, लेकिन स्टेज के ऊपर बच्चे क्या करेंगे, तुम जब संगीत बजा रहे हो वो अभिनय करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसका ट्यून जो है म्यूजिक को जरा कम कर दो। और मैंने अपने फिर उन्माद में और अपने अहंकार में मैंने सोचा कि वो ठीक है। तो बहुत लोगों ने कहा कि तुम अब भी चेतो, जब स्वामी कह रहे हैं उसको तुम कम करने की कोशिश करो, कुछ करो, इसको बदल दो। तो जब इन्होंने कहा तो मुझे तो और भी लगा कि नहीं, ये तो करना ही नहीं है। तो स्वामी दूसरा दिन फिर म्यूजिक के लिए आए, रिहर्सल के लिए आए, तो म्यूजिक वही बजा। तो जैसे ही स्वामी ने सुना, स्वामी ने मुझे ऐसे घूर के देखा, एक शब्द उन्होंने कहा नहीं मुझे। बस उसके बाद स्वामी ने मेरे बदले में मेरी जगह पर मात्र साई सूर्यनाथ जी से वार्तालाप करना शुरू कर दिया। नहीं तो तब तक स्वामी ड्रामा के बारे में मुझसे ही बात करते थे और मुझे रोज ही मौका मिला करता था। लेकिन उसके बाद स्वामी ने मुझे बिल्कुल एक नजर तक देखा ही नहीं। और जब स्वामी ये करते हैं तो स्वामी तो अभिनय करते ही नहीं है, वास्तव में वही हो जाता है कि आप तो वहां है ही नहीं, मैं वहां था ही नहीं उनके लिए। और तब हम ऐसे तड़पते हैं, ऐसे तरसते हैं, आप तो जानते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद एक दिन स्वामी ने हम लोगों को अंदर बुलाया इंटरव्यू रूम में यहां पर। तो अंतर्वार्ता का जो सिलसिला चल रहा था उस दिन स्वामी ने कहा तुम लोगों को आज मैं ये खिलाऊंगा। तो हम 9 ही लोग वहां पर बैठे हुए थे और मैं तो बिल्कुल तब ऐसा बन चुका था, ऐसा बुरा हालत था, मैं बाबा के चरणों के सामने बैठा हुआ था, स्वामी मुझे देखते ही नहीं थे और सबसे बात करते थे स्वामी। मैं पाद सेवा भी करता था लेकिन वो सब कुछ करने देते थे लेकिन मुझसे बात नहीं करते थे। और स्वामी ने उस दिन अपने करकमल से वो बूंदिया होती है गरम गरम बूंदिया, ऐसे हाथ को हिलाकर, हिलाकर नहीं लेकिन हाथ को रगड़ के स्वामी ने अपनी उंगलियों के मध्य से ये जो बूंदिया निकालकर बिल्कुल ऐसा गर्मा गर्म बूंदिया और सारा ही कमरा महक उठा। और उस महक में स्वामी ने कहा कि शुद्ध घी से बना हुआ है और कैलाश से लाया हूं तुम लोगों के लिए। और उसका जो है वर्णन कर ही नहीं सकते हैं उस जो उसका जो टेस्ट। तो किसी ने आगे, अभिनव ने अपना हाथ बढ़ाया, स्वामी ने कहा इतना ही, दोनों हाथ आगे करो। और सबके दोनों ही हाथ भर के दिया स्वामी ने, बस अपना छोटा सा हाथ स्वामी रगड़ते गए उंगलियों को और वहां से इतना गिरा सबको मिला। और मैंने एक अपने रुमाल में अपनी मां के लिए जरा सा बांध के ले जाने की कोशिश किया, स्वामी ने कहा अभी खाना है, अभी तुम्हें खाने के लिए दिया है, किसी के लिए नहीं है ये। पहली बार स्वामी ने मुझसे उस दिन बात किया तो मुझे भी जरा सा ढाढ़स पड़ी। तो मैंने स्वामी से कहा स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। और वाकई उसी कारण मुझे स्वामी ये पनिशमेंट दे रहे थे, पनिशमेंट नहीं लेकिन मुझे स्वामी ये चेतावनी दे रहे थे, स्वामी मुझे अवेयर कर रहे थे कि तुम गलत काम कर रहे हो। जब स्वामी कहते हैं तो उसका बिल्कुल अक्षरश पालन करना है। तो स्वामी ने कहा कि अभी भी वही म्यूजिक रखो, वही म्यूजिक बहुत अच्छा है, नहीं तुम समझते हो तुमने कंपोज किया है इसलिए ऐसा सोचते हो, क्या कर सकता है। मैंने कहा कि स्वामी ने बिल्कुल नहीं, स्वामी मुझे एक मौका दे दीजिए। फिर स्वामी ने कहा तब मैं म्यूजिक कंपोज करता हूं। वहीं बैठ के फिर वो वीणा वादक सबसे स्वामी ने ऐसा म्यूजिक कंपोज किया, वही धुन, गाने का जो धुन होता है उसी धुन को एक बार बजाने के लिए स्वामी ने कह दिया बस हो गया म्यूजिक। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो इतना, हम लोग इंसान ऐसे होते हैं, मैं तो ऐसा इंसान था। उसके बाद फिर मुझे लगा कि स्वामी ऐसा भी म्यूजिक होता है क्या। तो इतना बताने के बाद, सिखाने के बाद, फिर वही जो कुत्ते की धुन होते हैं, तो फिर मैंने कहा स्वामी ऐसे भी धुन होते। स्वामी ने कहा जैसा मैंने कहा है वही करो। फिर स्वामी ने कहा, तो ऐसा एक्सपीरियंसेस। और मैंने एक चीज देखा कि जब भी स्वामी ड्रामा में नेगेटिव एलिमेंट्स जब हम लोग दर्शाते थे, पॉजिटिव को दर्शाने के लिए जब नेगेटिव एलिमेंट्स भी दिखाना पड़ता है, जैसे कि जीसस ऑफ नाज़रेथ में जूडास को दिखाना ही था, और जूडास का बिट्रियल का जब सीन आता था तो उस वक्त स्वामी के चेहरे पर ऐसे सिलवटें होती थी, ऐसा उनको दुख होता था। स्वामी ने कहा कि हालांकि ये जो है आज तुम लोग ड्रामा कर रहे हो लेकिन ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। स्वामी कहते थे विश्व में ये नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, मात्र पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोगों ने एक बार वो हियर एंड देयर ड्रामा में ऐसा एक छोटा सा किरदार किसी का था जिसमें मदिरा पान करके वो बिगड़ जाते हैं शराब पी के। स्वामी ने कहा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो हम लोगों का लेक्चरर जो ये ड्रामा जो निर्देशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा स्वामी ये तो ड्रामा ही तो है। स्वामी ने कहा सारा विश्व ही ड्रामा है, इसमें भी ये क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस वक्त स्वामी का ये रूप देखा। वैसे रूप में तो स्वामी को हम लोग मापतोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि स्वामी ये किंचित मात्र में भी ये नेगेटिव जो होती है इस चीज को नकारात्मक चीज स्वामी बर्दाश्त नहीं करते हैं। स्वामी कहते हैं सकारात्मक बनो। तो उस वक्त ये जो मैंने बाबा से सीखा।
मुझे याद है कि एक बार शायद एस कुमार और आपको एक धुन बनानी थी जिसके लिए बड़ी मेहनत की रात भर, और जैसे ही आप कमरे में गए स्वामी ने गाना शुरू कर दिया उसको।
हाँ बिल्कुल, ये तो हम लोगों का
पूरा बताएं
जो वॉल्यूम 17-18 ब्रिज अक्रॉस टाइम जो है उसमें तेलुगु में एक गाना है पवल इंचु प्रतीशा। तो ये तब की बात है, फिर 68 बर्थडे में जब स्वामी हम लोगों से, स्वामी रोज कहते थे कि किसी का नकल मत करो। अगर अनूप जलोटा या कोई भी संगीतकार फनकार अपना फन दिखा सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, तो तुम खुद लिखो ना, ओरिजिनल बनो, डुप्लीकेट मत बनो। ये रोज कहा करते थे, तब की बात है 68 बर्थडे में। तो स्वामी रोज ही प्रतीक्षा करते थे कि हम अच्छे नए धुन बना के स्वामी को सुनाएं। और इंटरव्यू रूम में हम लोग एक छोटा सा कैशियो मात्र सुर रखने के लिए उसको लेकर हम लोग अंदर जाते थे और रोज ही तैयार होना पड़ता था। स्वामी कहते थे कोई नया चीज, नया धुन सुनाओ। अगर हम तैयार नहीं होते तो स्वामी कहा करते थे कि देखो प्रोग्राम ही कैंसिल कर देंगे। फिर स्वामी ने कहा कि देखो सारा विश्व के लोग, अच्छे अच्छे संगीतकार लोग कतार में खड़े हैं 68 बर्थडे में हमारे जन्मोत्सव में गाने के लिए। हम किसी को मौका नहीं दे रहे हैं, तुम लोगों को दे रहे हैं, और तुम अगर तैयार नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर हॉस्टल में सब लोगों ने अपना अपना गाना लिखना शुरू कर दिया, सब कवि बन गए। लंच डिनर में सब लोग एकदम ऐसे अपनी धुन में गाना लिखने लग गए। तो धुन बनाने वाले बहुत कम थे, मैं भी एक हुआ करता था, तो इसलिए मुझे इतने सारे गाने इन लोगों ने दिया। तो उनमें एक TVSSS प्रसाद राव मेरा सीनियर हुआ करता था, जिन्होंने ये पवल इंचु प्रतीशा स्वामी का एक झूला का गाना इन्होंने लिखा। तो मैंने उनसे यही प्रार्थना किया, इनसे मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि गाना ऐसा लिखिए भैया कि स्वामी आपका बर्थडे मना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी आप हमारे दिल में आज समावेश हो जाइए, हमारे दिल में आज आपके विराजिए, फिर वहां आपका बर्थडे मनाएंगे, ऐसा एक फील होना चाहिए। तो इन्होंने गाना लिख के दिया, शाम को तो स्वामी के चरणों में गाना ही था। तो एकदम टोटल डेस्परेशन में मैंने एस कुमार से कहा कि आप भैया तेलुगु मुझे नहीं आती है, आप मेरे को इसका अर्थ बता दो, नहीं तो धुन कैसे बनाएंगे। तो सुबह नाश्ता का समय था, हम लोग स्कूल के जो कॉमन रूम होता स्टाफ रूम में हम लोग बैठ गए। वहां एक बाबा का फोटोग्राफ था जिसमें डायरेक्टली भक्तों को देखता हुआ एक बाबा का फोटोग्राफ है, चित्र है, आंखें मिलती है। तो उसे देखकर वहां से प्रेरणा लेकर आशीर्वाद लेकर फिर ये धुन बनाना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब आधे घंटे 35 मिनट में धुन बन गया। और मैंने जब मात्रा गिनना शुरू किया पवल इंचु प्रतिशा तो 10 मात्रा में, तो मुझे लगा कि बाबा ये तो बिल्कुल ही 100% शत प्रतिशत ये तो झूला के लिए लिखा हुआ गाना है, क्योंकि झूले का जो अंदाज होता है, झूलने का जो अंदाज होता है वो 10 मात्रा में हो तो स्वामी को झूले में बैठकर झूलने में बहुत दिक्कत नहीं होती है,
आनंद आता है। अच्छा,
आनंद आता है क्योंकि धिन्ना धीरीना धिन्ना धीरीना, अगर 8 मात्रा में हो या ये तो द्रुत गति में हो तो लोग उसी अंदाज में झूले को झुलाएंगे और स्वामी ठीक से नहीं बैठ पाएंगे। तो 10 मात्रा में, तो जैसे धुन बना उसके बाद मुआयना करके देखा तो ये तो धुन राग बागेश्वरी में था, तो बागेश्वरी का समय भी उसी वक्त होता है जब करीबन स्वामी का झूला का समय होता है,
शाम
का करीब 7-8 बजे। तो ये बनने के बाद आफ्टरनून लंच ब्रेक में इसका एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी तैयार करके शाम को लैस होके बाबा के चरणों में हम लोग गए। तो स्वामी ने और कोई नया कंपोजिशन है, स्वामी ने ऐसे पूछा, तो एस कुमार जी ने कहा स्वामी सोनम ने एक नया भजन कंपोज किया है। स्वामी ने मुझे आंख थदेर कर स्वामी ने एक से देखा और स्वामी ने पूछा तूने कंपोज किया है, फिर उसके बाद हाँ गाओ, और एस कुमार ने गाना शुरू किया। प्रथम लाइन पवल इंचु प्रतिशा उसने गाया, उसके बाद स्वामी ने ये जो अंतरा तक गा के सुना दिया।
शुरुआत एस कुमार से करवाई और फिर पूरा गा दिया,
पूरा गा के सुना दिया स्वामी ने,
बहुत सुंदर।
और फिर स्वामी ने कहा इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बना है, नहीं आफ्टरनून लंच टाइम में बना था, वो भी सुनाना है, स्वामी ने कहा। फिर स्वामी ने कहा अब बताओ मैंने कंपोज किया है तूने किया है,
सुंदर।
स्वामी का ह्यूमिलिटी, जो उनका विनय भाव, हम लोगों ने जिंदगी में अगर सीखना हो तो एक चीज मुझे ये लगता है कि हम स्वामी से ये सीखें कि ऐसे विनय भाव। मैंने एक बार और देखा है जब रूपक शर्मा कहीं से साई भजन बिना सुख शांति नहीं भजन सीख के आए थे, तो स्वामी ने जैसे सुना उस भजन को स्वामी ने कहा बहुत पसंद आया तुम मुझे सिखा देना, और रोज स्वामी उसे बुलाते थे, और जहां जहां भी स्वामी जाते थे कहीं भी जाते थे उनके पीछे पीछे चलकर ये भजन गाना पड़ता था रूपक शर्मा को। इतना अच्छा मौका मिला उसे, और उसे स्वामी चिन्ना रूपक कहते थे क्योंकि पैदा रूपक रूपक चांगरकुटी हुआ करता था। तो फिर स्वामी ने कहा सुनाओ, भजन सुनाता गया। तो 1979 समर कोर्स में पहली बार स्वामी ने ये भजन गा के सुनाया समर कोर्स में, भजन बिना सुख शांति नहीं। और जब स्वामी समर कोर्स में भजन गाकर जब वापस आए, सबसे पहले रूपक शर्मा को बुलाया, स्वामी ने कहा मैंने ठीक ही गाया क्या, कोई गलती तो नहीं किया। तो रूपक शर्मा तो बिल्कुल भाव विमल होकर उसने कहा स्वामी नहीं, स्वामी बहुत, स्वामी सब आपका ही तो है। फिर स्वामी ने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं तुमने मुझे सिखाया है। तो स्वामी जो ग्रेटिट्यूड के बारे में कहते रहते हैं कि कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञता का भाव हमारे दिल में होना चाहिए, तो ये सबसे पहले मैंने देखा है स्वामी दिन रात इसी का पालन करते थे। तो ये विनय भाव मैंने स्वामी के साथ रह के जो देखा वो और कहीं मैंने देखा ही नहीं है।
मैंने सुना है आप गाने के साथ साथ स्पीच भी दिया करते थे।
नहीं ऐसे स्पीच तो नहीं, क्योंकि मैं ये स्पीच देने वालों में था ही नहीं, क्योंकि माइक देखते ही मैं डर जाता था और पैर कांपने लगती थी। तो पहली बार जब स्वामी ने कहा तेरे को स्पीच देना है, तो वो था एक फोरम ऑफ रिलीजन स्वामी ने रखा पूर्णचंद ऑडिटोरियम में। तो मेरे साथ स्पीच देने वालों में सब माहिर लोग थे, संदीप शास्त्री जी हमारे सीनियर। तो मैंने कहा कि इनके सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा, तो मैंने जाके इनसे विनती किया कमल सानी सर से, सर मैं क्या करूं। स्वामी ने कहा स्पीच देने के लिए, और मैं तो बिल्कुल डर के, मेरा तो जान ही निकला जा रहा है कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि तू देख, तेरे को एक नुस्खा देता हूं, तू ऐसा समझ ले कि सुनने वाली जितनी भी है सब मूर्ख है, तुम ही एक ज्ञानी हो, ये समझ के तुम स्पीच दोगे तो अच्छा रहेगा। तो सब लोग अपने अपने नुस्खे देते गए, अंत में जाके फिर स्पीच तैयार किया, सबका ही स्पीच रट्टा लगा के हम लोगों को वहां पर प्रस्तुति करना था। तो मैंने करीब 1.5 महीने तक रट्टा लगाया उसी स्पीच को, और उसमें सुधार लाते गए। और मेरे कमरे में एक श्रॉफ नाम का सीनियर हुआ करता था, उनसे भी सुना, रविन्द्र श्रॉफ जी आप मेरे को सिखा दो। सब लोगों ने अच्छी तरह से सबने सिखाना शुरू किया, प्रोनाउंसिएशन सारा ही करने के बाद फिर स्वामी इंटरव्यू में रिहर्सल देखने के लिए आने लगे। तो स्पीच का रिहर्सल हुआ, रिहर्सल में स्वामी आके सुनते थे, फिर उसमें जरा सा बदलाव स्वामी कह के बता के फिर स्वामी चले जाते थे। ये कर करके जब अब स्पीच देने का मौका आया, स्वामी का बर्थडे का समय था, तो मैं तो बिल्कुल अपना जान तो निकला जा रहा था, और मुझे ऐसा बुखार आया आप सोच ही नहीं सकते हैं, करीब 104 डिग्री का तो मेरा बुखार था। और मेरा जो फोरम ऑफ रिलीजन्स में सबको अपने अपने धर्म के बारे में बताता, मुझे बुद्धिज्म के बारे में बताकर फिर उसको सारे गाने में समेट कर सुमर मनवा सुमर पंचक तत्व सुविचार ये गाना गाना था। अब गला तो बिल्कुल ही बैठ चुका था, बैठ गया था, और उसके साथ साथ ही ये जो बुखार के कारण मैं कुछ नहीं कर पाता था। तो जैसे स्वामी आए इंटरव्यू के लिए, रिहर्सल के लिए आए, मैं बिल्कुल उस दिन पूर्ण रूप से उनके चरणों में मैं समर्पित हो गया। मैंने स्वामी से कहा, मैं स्वामी क्या करूं, स्वामी ने कहा स्पीच दे दो, अच्छा है। मैंने कहा स्वामी मैं बिल्कुल नहीं दे सकता हूं, स्वामी मेरा ये हालत है, स्वामी प्लीज। स्वामी स्वामी ने कहा मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों डरते हो। फिर स्वामी ने कहा इसको क्या कपड़ा पहना, क्योंकि सबका कपड़ा तैयार हो चुका था, मेरे लिए बुद्धिस्ट का वो रोब जो होता है बुद्धिस्ट का कपड़ा ही नहीं था। तो स्वामी ने कहा स्वामी कारुणानंद जी का जो झुब्बा है वो तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगा, वो पहन लो। फिर उसके बाद स्वामी ने कहा चश्मा उतार लो, चश्मा उतारोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा ना, तो तुम फिर उसके बाद तुम ये नर्वसनेस होगी नहीं। फिर उसके बाद स्वामी ने कहा कि इसका जो बाल है पूरा खींच के पीछे की तरफ संवार लो और बिल्कुल देखने में गंजा दिखाई दे ये। तो उसके बाद ये करके स्वामी के साथ ड्रेस रिहर्सल हुआ, तो मैं ठीक से गा भी नहीं पाया। स्वामी ने कहा अब क्या कर सकता है, इसका फेथ नहीं है इसलिए इसको इंजेक्शन दे दो। तो फिर डॉक्टर अलरेजा मुझे ले गए और टेट्रासाइक्लिन का बड़ा इंजेक्शन दिया उन्होंने, और शाम तक मेरे हालत में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ। तो फिर पर्दे के पीछे मैं खड़ा था, क्योंकि अंतिम मेरा था स्पीच, और मेरे आगे जितने भी वहां पर गए अपना अपना फूल लेके स्वामी को माल्यार्पण करने के बाद फिर उन्होंने अपना अपना प्रस्तुति, और मैं जैसे ही इन लोगों का प्रस्तुति इन लोगों का प्रवचन सुनता गया मेरी तो बिल्कुल हालत और भी खराब होता गया। और उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने मुझे धकेल कर स्टेज पर पहुंचा दिया, जाओ अब तुम्हारी बारी है। जैसे मैं वहां गया तो आंखें चुदिया देने वाली लाइट वहां पर चारों तरफ से जो मैंने देखा, तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इतना शोर शराबा, और स्वामी वहां बैठे थे। मैंने जाके फूल का माला बाबा को मैंने अर्पण किया और फिर स्वामी ने कहा हाँ जाओ बोलो। और जैसे ही मैंने अपना रट्टा लगाया हुआ स्पीच को कहना शुरू किया, प्रथम पंक्ति कहने के बाद उसके बाद मैं भूल गया स्पीच ही और मैं बगले झांकने लगा, फिर सारा ही गला भी अटक गया। और उसी वक्त जरा सा हलचल महसूस हुई तो स्वामी मुझे देखकर, स्वामी मुझे पानी का जो टम्बलर में जो स्वामी पानी पीते हैं वही पानी उठा के स्वामी मुझे दे रहे थे,
अपना ही ग्लास ले,
अपना ही ग्लास लेकर स्वामी मुझे पानी दे रहे थे। मैं तो ऐसी हालत में था, मैं एकदम सुध-बुध खो बैठा था। जाके स्वामी से मैंने ग्लास ले लिया और हलक से पूरा उतार दिया। पानी पीने के बाद मुझे पता नहीं लगा, बाद में लोगों ने कहा तुमने वापस वो ग्लास स्वामी को दे दिया और स्वामी ने लेकर उस टम्बलर को वहां रखा और फिर स्वामी ने मुझे इशारों से कहा जाओ बोलो। और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जो देखा हॉल में कुछ था ही नहीं, मैं बिल्कुल टोटली ब्लैंक पूर्ण रूप से मैं खाली हो गया था। और उसके बाद लोगों ने कहा, अचानक मेरी जब जान में जान आई, जो सचेत होकर मैंने चारों तरफ देखा तो स्वामी मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच के ले जा रहे थे वो स्टेज के एक कोने की तरफ और कह रहे थे फोटोग्राफ खींचो, और लोग फोटोग्राफ खींच रहे थे बेतहाशा। और फिर स्वामी ने डॉक्टर भगवंतम को बुलाकर स्वामी ने कहा अनाउंस करो कि इस लड़के को 104 डिग्री का बुखार था लेकिन कैसा गाया इसने, अनाउंस करो तुम। एक बार अनाउंसमेंट हो चुका था, मैं सुन रहा था, फिर स्वामी मेरा हाथ पकड़ के खींच के उस तरफ ले गए दूसरे कोने में। फिर डॉक्टर भगवंतम से कहा तूने अनाउंस किया कि नहीं, उन्होंने कहा स्वामी अभी किया है, मैं फिर जाके करो, इसको 104 डिग्री का बुखार था वो कहना है तुम्हें। और मैं इस हालत में था कि स्वामी ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं मैंने क्या किया है वहां पर। और उसके बाद लोगों ने, और बाद में मैंने देखा वो सुना भी कि मैंने अच्छा गाया था उस दिन, वो स्पीच भी बाकी जो था मैंने अच्छा ही स्पीच दिया था, 20 मिनट का स्पीच था और उसके बाद भजन के साथ 20 मिनट का था। और फिर उसके बाद मुझे आज रिट्रोस्पेक्ट में जब मैं सोचता हूं समझता हूं तो उनके जो ये इन्फॉर्मल स्कूल में स्वामी हमें कैसे तैयार करते हैं स्पीच देने के बाद में, जिंदगी में बहुत जगह में, बहुत ऐसे जगहों में मुझे लोगों ने पकड़ के कहा कि तू दो लफ्ज स्वामी के बारे में सुनाओ। तो ये जो वाक शक्ति स्वामी हम लोगों को देते हैं उसका भी स्वामी हम लोगों को जो रियाज कराते हैं उसका जो प्रैक्टिस कराते हैं वो इन्फॉर्मल स्कूल में इस तरह प्रैक्टिस कराते हैं जैसे कि मां कराती है। तो मेरा इस तरह शुरू हुआ था वहां पर।
1993 में आपने पीएचडी ली भगवान के हाथों से और फिर मेरे ख्याल से आप यहां से निकले एक अलग दुनिया, अलग एक्सपीरियंस। پھر آپ کو کیسا محسوس ہوا بھگوان کا ساتھ؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھگوان جب جاتے ہیں فزیکلی ہم لوگ دور جاتے ہیں مگر کبھی بھی ان سے دور نہیں رہ پاتے، اپنی اس زندگی کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا 1993 کے بعد کی.
سب سے پہلے تو 1993 میں جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو انتیم ودائی کا جو پاد نمسکار ہوتا ہے، ودائی تو ویسے ہوتا نہیں لیکن سر شریر جب لوگ ہم بابا سے بہت دور نکل جاتے ہیں تو ودائی کہہ سکتے ہیں. تو جب جا رہا تھا تو میں نے سوامی سے پوچھا کہ سوامی میں گورنمنٹ سروس جوائن کروں؟ سوامی نے کہا کہ کر سکتے ہو. پھر میں نے کہا سوامی آپ جو سائی سنگٹھن ہے، آپ کا سنگٹھن ہے، اس میں میں کام کروں؟ سوامی نے کہا کہ کر سکتے ہو. پھر سوامی واپس میری طرف آئے اور سوامی نے کہا کہ ڈونٹ پل دا کارٹ، جسٹ پش دا کارٹ. یہ میں کبھی بھولوں گا نہیں کیونکہ یہ بابا نے انگریزی میں کہا سوامی نے. اور اس کے بعد جو مجھے موقع ملی، یہ جو
میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو سوامی نے کہا کہ گاڑی کو آگے سے مت کھینچو، پیچھے سے اچھے سے پش کرو.
تو پیچھے سے جب دھکا لگاتے ہیں تو خود کو ہم لوگ دکھاتے نہیں ہیں، خود دکھتے نہیں ہیں. آگے سے جب جاتے ہیں تو ایک دل میں چاہت ہوتی ہے کہ اپنا ڈنکا بجا دیں اور کہیں کہ میں نے کیا ہے. تو یہ سوامی نے جو مجھے موقع دی، اور اس کے بعد آج تک یہ بیک سٹیج مینجمنٹ کا کام اتنا بابا نے مجھے موقع دیا ہے کہ کہہ ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے میں نے یہاں سے جانے کی بات یہ سیکھا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ بابا دے دیتے ہیں. ان کا دینے کا انداز اپنا ہوتا ہے لیکن جو چاہتے ہیں وہ بالکل 100% شت پرشت دیتے ہی ہیں. تو میں نے چاہا یہی تھا، دونوں ہی سوامی نے دے دیا، فلفل کیا. تو یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے تو سوامی کے شاریرک سانیدھیہ سے دور ہم جاتے ہیں تو ذرا ترپاہٹ محسوس کرتے ہیں بگننگ میں. تو اس وقت یہ جو میری ابسٹریکٹ انوبھوتیاں ہیں کہ سب سے پہلے تو میں نے سوامی سے کہا کہ سوامی آپ سے یہاں آ گئے ہیں تو پھر مجھے تڑپنا نہیں چاہیے. تو بہت سمے ایسا ہوتا تھا میں بالکل پورن روپ سے بھاؤ شونیہ ہو جاتا تھا. تب مجھے محسوس ہوتا تھا کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم میں کتنی بھکتی ہے، ہم بھکتا ہے یا نہیں، ہم کیا جانے. تو وہ تو بھگوان ہی کہہ سکتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ میں بالکل مجھ میں اب بھکتی ہے ہی نہیں شاید. اور تب جب میں بھاؤ شونیہ ہو جاتا تھا میں سوامی کے چرنوں میں بیٹھ کے، پوجا میں بیٹھ کے، پوجا کمرے میں بیٹھ کے، پھر میں سوامی سے یہی کہتا جاتا تھا سوامی مجھے بھاؤ سے بھر دیجیے. تو ایک بار ایسا ہوا میں ہنومان چالیسا پاٹ کر رہا تھا، تو ہنومان چالیسا کرتے ہوئے اچانک میں نے دیکھا ہم لوگوں کے جو بدھسٹ پوجا استھان میں ہم لوگ بھگوان کو جل چڑھاتے ہیں تو سات سپت کل میں، جیسے کہ سپت سندھو کی طرح سوامی کو ہم لوگ سات کپ میں، چھوٹے چھوٹے کٹوری میں ہم لوگ پانی چڑھاتے ہیں. تو پانی چڑھا کے رکھا ہوا تھا، وہ پانی ایک ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا تھا. تو اچانک میں نے کیا دیکھا، جو یہ ہنومان چالیسا کہہ رہا تھا جب میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ سارا ٹیبل ہل رہا تھا. تو جیسے اس طرف میں نے جب دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. پھر تو اس وقت جو میرے بھاؤ شونیتا، اس شونیتا میں سوامی نے ایسا پرویش کیا، انہوں نے ایسا بھاؤ منتھن کر دیا. اس وقت پہلی بار بھاؤ منتھن کا یہ مجھے یہ انوبھوتی جب ہوا تھا، یہ ایسا ہی تھا. تو میں نے سوامی سے کہا، سوامی میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ تو جانتے ہو مجھ میں کتنی سامرتھیا ہے، آپ کو پانے کی، آپ کے پرتی چاہنا رکھنے کی بھی جو ہے سامرتھیا وہ تو آپ دیتے ہو، تو پھر میرے ساتھ یہ سب آنکھ میچونی، یہ سب کھلواڑ، یہ سب کیوں کر رہے؟ ایک تو وہاں سے بھیج دیا، یہاں آ کے پھر یہ دکھاتے ہو، جب دیکھتا ہوں تو پھر کچھ نہیں ہو رہا ہے. اسی وقت وہ سارا ٹیبل اتنے زور سے ہلنے لگا اور سارا پانی چھلک کے، آلموسٹ تین چوتھائی پانی چھلک کے باہر نکل آیا. تو پہلی بار انہوں نے مجھے یہ آواز دیا کہ میں کہیں بھی تم سے دور نہیں ہوں، میں سدا باہر تیرے ساتھ ہوں.
سنو بھیا، اسے آج کل ہم دیکھتے تھے بھگوان کچھ بچوں کو اپنے ساتھ لے آیا کرتے تھے، آپ کو ایسا کبھی موقع ملا ہے کہ آپ نے بھگوان کے ساتھ سفر کیا ہو؟
جی، مجھے پہلا موقع جب 11ویں ککشا میں پڑھتا تھا میں، تب مجھے ملا جب سدرشن جی ہمارے وارڈن صاحب نے مجھے آ کے کہہ دیا کہ دیکھو سوامی تمہیں لے جا رہے ہیں، کل سوامی مدراس جا رہے تھے. اور تب کی بات ہے جب سوامی تیلگو نیو ایئرس ڈے میں جاتے ہی تھے، مدراس میں جاتے تھے سوامی جایا کرتے تھے. تو پہلی بار جب سوامی کے کار میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اندر بیٹھ کے دیکھنے میں وہ مزہ کیا ہوتا ہے، جبکہ چاروں طرف بھکت ہی بھکت ہوتے ہیں اور ان کو کبھی ان کا جو ودائی کرنے کے لیے ہاتھ میں پھول لے کر اور پشپ برشتی کر کے، اور سوامی کے کار میں ہم لوگ ایسے جا رہے تھے تو گاڑی میں ہم چار ہی لوگ تھے और रूपक चांकुटी जी स्वामी के साथ पीछे स्वामी के साथ बैठा हुआ, मैं राधा कृष्ण सर के साथ, राधा कृष्ण सर गाड़ी चला रहे थे, उनके साथ मैं आगे वाली जो सीट में बैठा हुआ था। तो फिर स्वामी ने कहा कि तुम गाना गाओ ना। सबसे पहले मैंने गाया ऐसा प्यार बहादी मैया और राम सुमर के रहम करे ना, ये सारे गाने गाने के बाद फिर स्वामी ने रूपक जी से कहा कि तुम गाओ अब। फिर उसके बाद स्वामी ने ये, मैंने पहला प्रशिक्षण फिर उनसे लिया, स्वामी ने कहा, और स्वामी चुकते ही नहीं है, प्रत्येक हरेक मौके में स्वामी सिखाते जाते हैं, सिखाना जरूर है। तो उन्होंने कहा कंपटीशन नहीं करना, परफेक्शन करना है।
अच्छा।
फिर स्वामी ने कहा समझते हो मतलब क्या होता है? मैंने कहा नहीं स्वामी, कंपटीशन में ऊंच नीच हो जाता है, परफेक्शन में सब लोग परफेक्ट हैं, ये देखो परफेक्ट रूपक है, तुम परफेक्ट सोनम हो, ये हमारा परफेक्शन है, स्वामी ने कहा। तो फिर मैं रास्ते में कहीं पर जरा सा मुझे मतली आने लगी, तो मैंने कहा स्वामी मुझे जरा सा अच्छा नहीं लग रहा है, स्वामी मैं जरा बीमार जा हो गया हूं। तो स्वामी ने एक मौसम्बी, एक संतरा एक्चुअली क्रिएट करके मुझे स्वामी ने दिया और कहा कि ये खा लो, और इसको खाने के बाद भी तुम अगर बीमार रहे तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा तुमको। तो उसको मैंने पील करके, उसे काट करके, उस संतरे को निकालकर जब मैं खाने लगा, तो सबसे पहले मैंने उसका जो बाहर का जो पील होता है वो भी मैं खाना चाहता था, क्योंकि वो तो स्वामी का सृष्टि किया हुआ है। तो स्वामी ने कहा पागल है क्या, वो थोड़े खाया जाता है, उसको फेंक दो बाहर, वो खाने वाला चीज जो है जहां रस होता है उस रस को पी लेना है, जहां रस नहीं है उसको फेंक देना है, सारा सृष्टि इस हाथ में है, स्वामी ने कहा उस वक्त। उसके बाद तो इतने बार हम लोगों ने सुना है स्वामी अपने छोटे से हाथ को दिखाकर कहते थे कि सारा सृष्टि कहां है, यही है, मेरे साथ है। तो उस वक्त स्वामी ने सबसे पहले तो ये सिखाया कि जज्बात में बहके उस चीज को तुम मत लो जो त्याज्य होता है, जो स्वीकारने लायक होता है, जिसमें रस होता है उसको तुम स्वीकार लो। फिर उस वक्त स्वामी ने कहा रसो वैसा है, ये कहते हुए फिर दोनों उनके चरणों को मेरे कंधे पर रख दिया और पीछे से बैठ के रूपक के ऊपर ऐसे सोकर दोनों पैर मेरे ऊपर रखकर स्वामी और हम लोग सफर करने लगे। तो मैंने अपने दोनों हाथों से उनके चरणों को मैंने पाद सेवा करना शुरू किया, तो स्वामी ने ऐसा ऐसा करके पैर से मुझे मार के स्वामी ने कहा अभी मौका मिल रहा है ना, इसका फायदा लो, ऐसा उस वक्त कहा स्वामी। और उस ट्रिप में ऐसा हुआ, हम लोग राजा ऑफ वेंकटगिरी के महल में गए हम लोग। तो जाते ही स्वामी ने सबसे पहले एक दीवार के सामने जाकर वहां से एक कृष्ण भगवान का मूर्त उठा के स्वामी लेके आए। तो स्वामी ने कहा ये मैं 30 साल पहले यहां रखा था, इनको दिया था, वही है, तब की बात है जब मैं यहां पर कॉफी पीने के लिए आया करता था। फिर स्वामी ने एक एल्बम लाके हम लोगों को दिखाया, तो एल्बम जब दिखा रहे थे स्वामी की गोद में एल्बम रखा हुआ था, हम सब लोग चारों तरफ से स्वामी को घेर कर एल्बम देख रहे थे। तो मुझे तब महसूस हुआ कि मैं स्वामी के गोद में अपने हाथ को जोर से दबाकर, उनके गोद को मैं जोर से दबाकर वो देख रहा था, ये मैं भूल गया था कि स्वामी के साथ मैं बैठा हुआ हूं और उनको मैं तकलीफ पहुंचा रहा हूं। जैसे मुझे ये प्रतीत हुआ कि मैंने ये जो गलत काम किया है, ये आभास होते ही मैं एकदम तड़क के वहां से उठ गया। स्वामी ने जोर से मेरे सर को ऐसे पकड़ के दबाकर अपने गोद पर, स्वामी ने कहा क्या मैं नहीं जानता हूं कि तुम मेरे ऊपर ऐसे सवार होकर देख रहे हो, सचित आनंद हूं मैं, सब जानता हूं, अभी तेरे को मौका दे रहा हूं, इससे क्यों तुम भागना चाहते हो, अभी ले लो मौका, बाद में नहीं मिलेगी, अभी जब मिल रहा है ले लो इसको। तो आज रेट्रोस्पेक्ट में मैं जब सोचता हूं, समझता हूं, तो कितना अच्छा मौका था वो जब स्वामी ऐसे सिखाया करते थे। तो स्वामी के साथ जाने का ऐसा एक ये किस्सा था। स्वामी के साथ जब हम दूर चले जाते हैं, उनके शारीरिक सानिध्य से दूर जाते हैं, तब भी स्वामी उनका जो सर्वव्यापकता का जो दर्शन देते हैं, उसका एक किस्सा ये हुआ कि हम लोग वृंदावन में थे, तो शाम का वही वक्त था, वृंदावन में स्वामी के साथ सत्संग हो रहा था। तो उस वक्त उन दिनों एक जर्मन भक्त, जर्मनी से एक भक्त आए थे, तो रोज स्वामी भक्तों को दर्शन देने के लिए जाते ही उनको इंटरव्यू के लिए, अंतर्वार्ता के लिए भेज देते थे। तो हम लोग बिल्कुल सोचते थे कि स्वामी इसने क्या किया है कि रोज स्वामी, एक हफ्ते तक यह सिलसिला जारी रहा, स्वामी ने रोज ही सुबह सुबह इनको स्वामी ने अंतर्वार्ता का मौका दिया। तो शाम का फिर वही वक्त, स्वामी ने उस दिन तो इनको बुला दिया, तो स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वो ایکسپیرئنس بتاؤ، یو ٹیل یور ایکسپیرئنس ان سکم، سوامی نے کہا. اور مجھے سوامی نے دیکھا، غور سے دیکھا. سکم کہتے میرے تو بالکل رونگٹے اور کان سارے ایک دم کھڑے ہو گئے، کیونکہ مجھے لگا کہ آپ مجھے بہت موقع ملنے والا ہے، سوامی مجھ سے بہت زیادہ بات کریں گے آج. پھر یہ جو ہے سوامی نے ان سے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ میں سکم میں گیا تھا، اور سکم میں جانے کے بعد میرے ساتھ ایک پتھ پردرشک جو ہوتا ہے ٹریول گائڈ، وہ بھی میرے ساتھ تھا. تو وہ مجھے ایک جنگو نام کا جگہ ہے نارتھ سکم میں، جو ایک دم بیکورڈ ایریا جسے کہتے ہیں، اور جس کو لوگوں نے یہ لیپچا، جو سکم کا سب سے آدم واسی جو ہوا کرتے ہیں، تو آدم واسیوں میں لیپچا ہی سب سے آدم واسی ہے سکم کا. تو ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کا ونش ختم نہ ہو، سرکار نے ان کے لیے ایک الگ ہی جگہ، ایک گاؤں ہی بنا کے رکھا ہے، وہاں پر یہی لوگ رہتے ہیں تاکہ ان کا جو سنسکرتی ہے وہ لپت نہ ہو. تو سنسکرتی کو سلامت رکھتے ہوئے یہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں. تو ان کو وہاں لے گئے تھے. تو وہاں جانے کے بعد شام کا وقت تھا، تو سب لوگ ان کو ان کے گاؤں کا جو مکھیا ہوتا ہے ان کے پاس لے گئے تھے. تو مکھیا کے گھر کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الاؤ جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، اور یہ لوگ وہاں بیٹھ کے وہ جو توڑی کی طرح ایک سوم رس ہوتا ہے، یہ لوگ بناتے ہیں، اسے سوم رس کہیں یا توڑی کہیں، یا اسے یہ لوگ چھی کہتے ہیں، چھنگ کہتے ہیں. تو اسے پینے کے بعد لوگ بالکل مدہوش ہو جاتے ہیں. تو وہ پی کر یہ لوگ گانا گا رہے تھے، اور گانا بھی کیا گاتے ہیں، ان کے سارے گانے پرکرتی کے اوپر ہوتا ہے، پرکرتی کا جو پرشستی کرتے ہوئے یہ لوگ گانا بناتے ہیں. تو ان کو پرکرتی پتر ہی کہا جاتا ہے لیپچا لوگ. اور شاستروں میں الیکھ ہے کہ کہیں یہی لوگ تو کراٹ نہیں ہے، جو مہا بھارت میں بھی جن کا الیکھ ہے. تو یہ لوگ وہ گانا گا رہے تھے، تو انہوں نے، ان بھکت نے، جو جرمن بھکت نے دیکھا کہ دیوار پر ایک بڑا سا تھنکا، جسے کہتے ہیں تھنکا ہوتا میورل پینٹنگ، دیوار سے لگا ہوا ایک بڑا سا ایک
چتر ہے،
ہاں جی چتر ہوتا ہے، وہ چتر ایک خاص طور سے، خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے. تو اس چتر میں انہوں نے دیکھا بھگوان بابا کے ایک بڑا سا، اتنا سندر چتر تھا، لیکن دکھنے میں لگتا تھا بابا ایک تانترک گرو ہو، ایک سکل جسے کہتے ہیں نر منڈ کا ہی ایک کرسی کے اوپر بابا بیٹھے ہوئے تھے. اور بابا کا جو چہرہ سب وہی تھا، ماتر دیکھنے میں ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کہیں وہ ٹبیٹن تو نہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور ناک نقش جو تھا ایک دم ٹبیٹن سے، ٹبیٹن ہی لگتا تھا، منگولائٹ لگتا تھا. تو انہوں نے ان سے رہا نہیں گا، انہوں نے پوچھا کہ ہو ایزی کون ہے. تو مکھیا نے کہا وہ تو پونگڈوم ہے، اور لپچا بھاشا میں پونگڈوم یہ جو ان لوگوں کا دیوتا جو ہوتا ہے، اشٹ دیو جو ہوتا ہے، وہ کراٹیشور، جب کراٹیشور کے زمانے کے بعد یہ لوگ ہنٹنگ کرتے ہیں، رہن سہن ان کا کیا ہوتا ہے، یہ لوگ شکار کھیلتے ہیں، تو یا تو بھیڑ بکرے چڑھاتے ہیں. تو شکاریوں کا ایک ادھشٹھاتا جو ہوتا ہے، یہی ان کا دیوتا ہوتا ہے. تو شکاریوں کا ادھشٹھاتا کو پونگڈوم کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پونگڈوم ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ چتر کہاں سے ملا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے ایک جوگی، فقیر کو جوگی کہتے ہیں لوگ، تو ایک جوگی آیا تھا، اس نے جھولا سے نکال کر ہمیں دے دیا کہ تمہارا بھگوان یہی ہے، تمہارا دیوتا یہی ہے. تو تب سے ہم لوگ بالکل بھولے پن میں، یہ لوگ جو اس کو رکھے، پوجا تو نہیں کرتے، ان کے چاروں طرف گانا گاتے تھے اور خوش ہوتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ تمہارا پونگڈوم کے جو پردیش ہے وہاں سے میں آیا ہوں، اور تمہارا پونگڈوم اوترت ہو چکے ہیں، تم لوگ بھی جا کے درشن کر سکتے ہو. میں نے ان سے یہ کہہ دیا سوامی. انہوں نے، ان کا سپیچ اتنا ہی تھا، اور سوامی زور سے مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے سوامی. تو یہ ان کا جو ہے، میں نے بہت بار یہاں سے جانے کے بعد میں نے یہ انوبھوتی کی ہے کہ جہاں ہم لوگ جاتے ہیں، جہاں لوگ بلاتے ہیں کہ سوامی کے بارے میں کچھ کہہ دو، اور ہم لوگ جاننے والے بن کر وہاں پر جاتے ہیں، اپنی چتورائی کو لے کر سوامی کے بارے میں بتا دیں، اور وہاں جانے کے بعد ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سب لوگ پہلے سے ہی بھجن کرتے ہیں، پہلے سے ہی بال وکاس چل رہا ہوتا ہے، کیسے کب شروع ہوا ہمیں بھی پتا نہیں. سو جسے بھگوان کو سوئمبھو کہتے ہیں، وہ بالکل ہی سوئمبھو ہے، کہیں بھی ان کے بارے میں، ان کے سارو بھومکتا جو ہے وہ آج تک پرچلت ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ چاروں طرف کہیں بھی کن کن میں ویاپک ہے.
سنو بھیا، بہت بہت دھنیواد. بھگوان کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے.
بالکل.
اور آپ کے پاس تو بھگوان نے اتھا دیا ہے، موقع ملا تو ہم پھر سے بات کریں گے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ختم کرنے سے پہلے اگر آپ ایک دو لائنیں گا سکیں कोई भी प्यारा सा गीत कैसे कह दूं।
अभिमन्यु भैया, आपने जो बाबा से प्रेरित होकर जो आपने ये जो मुखड़ा आपने जो लिखा है गजल,
हम लोगों ने आज के मूड के लिए ठीक है वही गा,
तो वही गा के सुना दूंगा
इसको आज हम।
कैसे कह दूं कि आप पास नहीं होते हैं, महसूस पल पल करता हूं मगर दीदार नहीं होते हैं, यादों को तेरी सीने में छिपाए जीते हैं, लब तो फिर भी सीलू आंसू दगा दे जाते हैं। जय साईराम।
यह रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। स्वामी के महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी श्री सुनम गैम्सो तेंजिन जी से टीम रेडियो साई के सदस्य श्री अभिमन्यु कौल जी की हुई भेंट वार्ता के दूसरे एवं अंतिम भाग के प्रसारण के पश्चात अब प्रस्तुत है भगवान बाबा द्वारा गाया गया एक भजन।
भजन बिना सुख शांति नहीं,
भजन बिना सुख शांति नहीं,
साईं भजन बिना सुख शांति नहीं,
साईं भजन बिना सुख शांति नहीं,
हरि नाम बिना आनंद नहीं,
साईं नाम बिना
जपजान बिना संयम योग नहीं,
जपजान बिना संयम योग
प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं,
प्रभु दर्श बिना
दया धर्म बिना सत्य कर्म नहीं,
यह रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी और आप एशिया स्ट्रीम पर प्रशांति निलयम से हमारा सीधा प्रसारण सुन रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, भगवान बाबा द्वारा गाए गए इस भजन के साथ ही सीधे प्रसारण के अंतर्गत हमारा हिंदी भाषा में होने वाला आज का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हिंदी में हमारा अगला कार्यक्रम पुनः मंगलवार को शाम 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा और अगला सीधा प्रसारण गुरुवार की शाम इसी समय होगा। यदि आप हिंदी कार्यक्रमों को स्वेच्छानुसार सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.radiosai.org/hindibroadcast पर जाकर उन्हें डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। आपके सुझाव एवं टिप्पणियां हमारी उत्तरोत्तर प्रगति में बहुत सहायक होती हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उन्हें ईमेल द्वारा हमें भेजना न भूलें। हमारा पता है listener@radiosai.org। श्रोताओं, रेडियो साई टीम से मैं अभिषेक अब स्वामी से आज्ञा और आप सबसे विदा लेता हूं। कार्यक्रमों की श्रृंखला को अब बिशु भाई अंग्रेजी भाषा में एक बार पुनः आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी की एशिया स्ट्रीम पर हमारा सीधा प्रसारण। धन्यवाद। जय साई राम।